हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वक्त एक बार फिर अपनी रफ्तार से गुजर गया था। एक ओर धृति की नाराजगी दूर करके इस रिश्ते को, अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाने से रोकने की अर्णव की कोशिशें जारी थीं। वो पूरी कोशिश करता रहा धृति को अपने प्यार पर विश्वास दिलाने की। दूसरी ओर धृति की नाराजगी और बेरुखी भरा व्यवहार भी जारी रहा। वो अब ना तो अर्णव से कुछ उम्मीद करती थी, ना उसे अपने लिए कुछ करने देती थी और ना ही उससे कुछ बात करती थी। जब अर्णव कोशिश करता तब भी उसकी ओर से बेरुखी ही जारी रहती थी। धृति के साथ अर्णव का ध्यान अपने मकसद पर भी था। वहीं धृति अपने सभी फर्ज बेमन से निभाते हुए अपने काम में पूरी तरह घुसी हुई थी। यहाँ धृति और अर्णव का रिश्ता टूटने के कगार पर पहुँच चुका था, तो दूसरी तरफ कबीर और सृष्टि का रिश्ता रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा था। सृष्टि की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने सज रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थी कि इन सपनों की उम्र बहुत छोटी थी। अर्णव उसे उस ऊंचाई पर लाकर नीचे धकेलने वाला था, जहाँ से गिरकर वो पूरी तरह टूट जाए, बिल्कुल वैसे जैसे आकाश टूट गया था। आखिर में वो दिन भी आ गया जिसके लिए सभी ने बहुत तैयारियां की थीं। वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने वाले थे, जिसका इंतजार सभी को बेहद ही बेसब्री से था। हालांकि धृति पूरे प्लान को नहीं जानती थी और ना ही उसने जानने में कुछ दिलचस्पी दिखाई थी। वो बस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी और आज वो अपने सपनों को उड़ान देने वाली थी, अपने बनाए डिजाइंस को प्रेजेंट करने वाली थी, जिसके लिए वो थोड़ी नर्वस भी थी। इस वक्त धृति उस चेंजिंग रूम में थी जहां वो मॉडल्स मौजूद थे जो उसके डिजाइन किए आउटफिट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने वाली थीं। धृति सब चेक कर रही थी कि आउटफिट ठीक से कैरी किया है या नहीं, उसके हिसाब से मेकअप और ज्वेलरी है या नहीं। उसे सब कुछ परफेक्ट करना था और उसी में लगी हुई थी वो। उसके साइड के तीन चेंजिंग रूम के बाद वो चेंजिंग रूम था जहां कुछ न्यू मॉडल्स के साथ सृष्टि भी तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट बाकी मॉडल्स को लेकर वहां से चली गई। बस सृष्टि ही रह गई जो कि कबीर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में गेट खुला और कबीर के साथ अर्णव और माधुरी ने वहां कदम रखा। हो गई तुम रेडी? कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर सवाल किया। अर्णव को सृष्टि जानती नहीं थी और माधुरी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने भी बाकी दोनों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना ध्यान कबीर पर लगा दिया और मोहिनी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, हाँ देखो कैसी लग रही हूँ मैं। यकीनन खूबसूरत तो लग रही हो, पर क्या फ़ायदा इतना सब करने का जब तुम इस फैशन शो में पार्ट ही नहीं लोगी। जवाब कबीर के बजाय अर्णव ने दिया और साथ ही अफसोस भी जाहिर कर दिया। उसका जवाब सुनकर सृष्टि ने चौंकते हुए उसे देखा और हैरानगी से सवाल किया, क्या मतलब हुआ इसका? वही जो तुमने समझा कि तुम इस फैशन शो में पार्ट नहीं लोगी। अर्णव ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया, पर उसका जवाब सुनकर सृष्टि को लगा जैसे किसी ने बेहद भद्दा मजाक किया हो उसके साथ और वो एकदम से उस पर भड़क उठी। क्यों, क्यों नहीं ले सकती मैं फैशन शो में पार्ट? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अर्णव अपने हाथों को पॉकेट में डालते हुए कुटिलता से मुस्कुराया, पर उसके बाद सृष्टि को जरा भी पसंद नहीं आई। वो तो कब से इस फैशन शो में पार्ट लेकर शो स्टॉपर बनने के ख्वाब देख रही थी। इसी फैशन शो की बदौलत अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी, आकाश का जगमगाता सितारा बनने के ख्वाब देखने लगी थी। अर्णव की बातें उसे ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने उससे उसका सब कुछ एक झटके में छीन लिया था, जो उसके बर्दाश्त की हद से पार था। इसलिए बिना अर्णव की पहचान जाने वो गुस्से से उस पर चीख पड़ी, और तुम होते कौन हो ये कहने वाले? सृष्टि का सवाल सुनकर अर्णव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, फिर तीखी नजरों से उसे घूरते हुए बड़े ही गुरूर भरे लहजे में जवाब दिया, उस कंपनी का CEO हूँ जिसने इस पूरे फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरे फैसले माने जाएंगे। ये मैं डिसाइड करूँगा कि कौन मुझे अपने शो में चाहिए और किसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, मिस सृष्टि अवस्थी। सृष्टि को जोरों का झटका लगा। अर्णव की पहचान जानकर वो बुरी तरह चौंक गई। पहले तो वो अचंभित सी उसे देखती रही, फिर उसने कबीर का रुख किया और अविश्वास भरी नजरों से उसे देखते हुए घबराई हुई सी बोली, कबीर क्या है ये सब? तुमने मुझे इस फैशन शो के लिए साइन किया था, फिर ये क्या हो रहा है यहाँ मेरे साथ? कबीर ने एक नज़र अर्णव को देखा, फिर शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर वो सब सिर्फ एक नाटक था। कबीज सृष्टि को एक और झटका लगा और बेचैनी से उसे देखते हुए उसने करीब आकर पास जाना चाहा, पर माधुरी बीच में आ गई और जलती निगाहों से उसे घूरते हुए बोली, ओ हेलो, दूर रहकर बात करो, इसे छूने का हक सिर्फ मुझे है। तुम, सृष्टि ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए उसको घूरा। शायद उसका माधुरी का कबीर और उसके बीच आना पसंद नहीं आया था, पर माधुरी आज बहुत खुश थी। वो पहले दिन से इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। उसने सृष्टि की निगाहों से निगाहें मिलाईं और कबीर के बांह को बड़े ही हक से थामते हुए बोली, हाँ, मैं कबीर की फियांसे और होने वाली वाइफ। माधुरी ने कबीर के दिल पर दूसरी हथेली रखते हुए बड़े ही अदा से उसके दिल को सहलाया और ईवल विक्ट्री वाली स्माइल सृष्टि को पास की, जैसे उसे जला रही हो। और उसकी तरकीब काम भी आई थी। उसे कबीर के नज़दीक देखकर सृष्टि की सुलग गई थी। माधुरी की बात सुनकर सृष्टि बुरी तरह चौंक गई, पर अगले ही पल उसे जलती निकाहों से घूरते हुए दांत पीसते हुए बोली, कबीर मुझसे प्यार करता है। सृष्टि की बात सुनकर पहले तो माधुरी हंस पड़ी, फिर अफसोस जताते हुए बोली, ओ माय पुअर गर्ल, कबीर और तुमसे प्यार करता है, ये तो खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि कबीर तुम जैसी चालबाज मक्कार दो टके की बाजारू गोल्ड डिगर लड़कियों से प्यार क्या नफरत भी न करे। अंत तक आते आते माधुरी के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत छलकने लगी थी। वहीं उसकी बातें और उसके मुंह से अपनी इंसल्ट सृष्टि को नागवार गुजरी, पर उसने उसको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और उसे घूरते हुए बोली, कबीर ये क्या कह रही है? वही कह रही है जो तुम सुन रही हो। मैंने बस तुमसे प्यार का नाटक किया था ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब मोहब्बत में धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी चाहत माधुरी है, मेरी प्यारी मधु। कबीर ने माधुरी की कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए उसे अपनी करीब खींच लिया और प्यार भरी नज़रों से उसे निहारने लगा। कबीर के बात ने सृष्टि को सच्चाई का ऐसा झटका दिया कि उसे सब बिखरता नज़र आने लगा। पर इतनी आसानी से हार मान जाए वो सृष्टि नहीं। उसने आगे बढ़कर कबीर के कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से जबड़े भींचते हुए बोली, पर हमने साथ में एक रात बिताई है, तुमने कितने बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे, मोहब्बत का इजहार भी किया था, ये रिंग भी दी थी, ये सब झूठ कैसे हो सकता है। अपनी उंगली पर मौजूद उस चमचमाती रिंग को दिखाते हुए वो बिफर पड़ी। कबीर ने अपने कॉलर पर मौजूद उसके हाथ को झटक दिया और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, हर चमकती चीज हीरा नहीं होती स्वीट हार्ट, ये तो आर्टिफिशियल रिंग है। आम भाषा में कहूँ तो ये नकली रिंग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी मोहब्बत नकली थी और उस नकली मोहब्बत को असलियत का जामा पहनाने के लिए मुझे तुम्हें ये नकली रिंग गिफ्ट करनी पड़ी। और ये जो प्यार मोहब्बत में किए बड़े बड़े वादों की तुम बात कर रही हो ना, ये सब तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो तुम्हारा धंधा है। अमीर पैसे वाले हैंडसम लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना, उनसे प्यार का झूठा नाटक खेलना, जब तक दिल चाहे उनके पैसों पर अय्याशियां करना, अपनी फिजिकल और मॉनिटरी नीड्स उनसे फुलफिल करना, हर तरह से उनका इस्तेमाल करना, और जब कोई नया शिकार मिल जाए तो उन्हें धोखा देकर दूसरे वाले की बाहों में समा जाना।
मैंने तो तुम्हें वही लौटाया है जो तुम दूसरों के साथ करती हो, और मेरे साथ भी यही करने का इरादा था तुम्हारा। मेरे लुक्स और पैसों पर फिदा हुई तुम, सोचा मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मेरा इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशों और सपनों को पूरा करोगी, एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगी, मेरे पैसों पर ऐश करोगी, और जब खुद कामयाब हो जाओगी या तुम्हें कोई दूसरा मिल जाएगा तो दूध में मक्खी जैसे मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दोगी, जैसे आज तक करती आई हो। पर अफसोस कि इस बार दूसरों को प्यार में धोखा देने वाली ये शातिर लड़की खुद मेरे झूठे प्यार के जाल में फंसकर धोखा खा गई। वैसे धोखे का स्वाद चक्कर कैसा लगा तुम्हें? कबीर ने गहरी निगाहों से उसे देखा और शैतानी मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। सृष्टि तो उसकी बातें सुनकर जैसे सदमे में चली गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कबीर कह रहा है उसके लिए। सबसे ज्यादा वो इस बात से हैरान थी कि कबीर को उसके बारे में ये सब बातें कैसे पता चलीं। वो शॉक्ड थी कि वो इतने वक्त से उसके आंखों में धूल झोंकता रहा और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। उसे कुछ वक्त लगा इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में कि कबीर की मोहब्बत झूठी थी, सब फरेब था। कुछ पल वो शॉक्ड सी कबीर को देखती रही, फिर उसने एक नज़र अपनी रिंग फिंगर में मौजूद रिंग पर डाली जो नकली थी, और वो उसे असली समझकर कितनी खुश हुई थी। कबीर, मान लिया मैंने कि तुमने धोखा दिया मुझे, हमारे बीच जो भी था वो सब तुम्हारा रचाया नाटक था, सब झूठ हो सकता है, पर जो हमारे बीच हुआ उसे कैसे झुठलाओगे तुम? तुमने मेरे साथ रात गुजारी है और इस बात से तुम मुकर नहीं सकते। टू बी कंटिन्यूड।